उन चारों को देख कुशल धीरे से उनके पास आया और उन्हें देखकर बोला, तुम चारों आज ही आए हो ना। उसकी नजर विपिन पर भी पल भर के लिए आई, लेकिन शायद उसने उसे खास नोटिस नहीं किया, इसलिए उसके माथे पर एक शिकन आ गई। और तब उसने बाकी इंस्पेक्टर के डरे हुए चेहरे देखे और वो सबको शांत करते हुए बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, हम बस एक घुसपैठियों को खोज रहे हैं जो लोगों के बीच घुस आए और बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाने की हमारी कोई मंशा नहीं है, इसलिए तुम सब बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये सुनकर के बस घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा था, सभी ने राहत की सांस ली। हाँ, थोड़े लालची जरूर थे, लेकिन वो सच में इंस्पेक्टर ही थे और उनका उस घुसपैठिए से कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए उन्हें चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं थी। कुशल बड़े ही ध्यान से सभी इंस्पेक्टरों को देख रहा था, लेकिन उनके इमोशन के बदल जाने पर भी उसे कुछ पता नहीं चल पाया, इसलिए उसके माथे की शिकन और बढ़ गई और वो बोला, दोषी एक आत्मज्ञानी है, इसलिए नॉर्मल लड़ाकों की तरह उसकी बॉडी और उसकी आत्मा में अच्छा तालमेल नहीं होगा। मेरे पास एक खास चीज़ है जो आत्मा और बॉडी की मैच चेक करती है। तुम सब एक एक करके आगे आओ, इस चीज़ की मदद से अभी पता चल जाएगा कि तुम में से दोषी कौन है। इतना कहकर उसने चुटकी बजाई और एक बड़ा सा गोला निकाल लिया। गोला धीरे धीरे से घूम रहा था और उससे सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। गोला निकाल कुशल विपिन और पैरे से अलग किए हुए और उन इंस्पेक्टरों से बोला, क्यों ना हम उन मेहमानों से शुरू करें जो आज ही आए हैं। ठीक है, विपिन के पीछे खड़ा एक इंस्पेक्टर आगे आया। वो बेशक उस गोले के पास गया, इतना पास कि वो सफ़ेद रोशनी उस पर पड़ जाए और गोले पर कुछ अंक आ गए, 94। एक्सपर्ट बोला, 90 से ऊपर का अंक बताता है कि इंसान आत्मज्ञानी नहीं है, तुम जा सकते हो। अगला, आमतौर पर इंसान की बॉडी और आत्मा के बीच में बेस्ट मैच पैदा होते वक्त होता था। जैसे 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 इंसान का लेवल बढ़ता था, वैसे वैसे उसकी आत्मा और बॉडी का मैच कम होता जाता था। फिर भी अगर कोई आत्मज्ञानी ना हो तो उसके अंदर आमतौर पर 90 के ऊपर ही रहते थे। एक्सपर्ट की बात सुन इंस्पेक्टर के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया, मानो उसे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा, इसलिए वो मुड़ा और वापस भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। जिसके बाद एक और इंस्पेक्टर आ गया और वो गोले के आगे खड़ा हो गया, 92, वो भी पास हो गया। तीसरे इंस्पेक्टर ने ही 96 अंक से टेस्ट पास कर लिया, जिसके बाद बारी आई विपिन की। उसने एक गहरी सांस ली और कमरे के बीच में जाने लगा। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में कोई आत्मज्ञानी नहीं थे, इसलिए विपिन ने ये चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए ही उसे ये नहीं पता चला था कि उसकी बॉडी और आत्मा के मैच का कितना अंक जाएगा। लेकिन क्योंकि उसकी आत्मा की ध्यान टेक्निक स्वर की आत्मा आर्ट थी, इसलिए आत्मा निकाल पाने के बावजूद भी उसकी बॉडी और आत्मा का मैच आम लड़ाकू से ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा सावधानी से गोले के घेरे में गया। उस पर भी सफ़ेद रोशनी पड़ी और गोले पर अंक आ गए, 100। परफेक्ट मैच। उसका रिजल्ट देखकर कुशल और उसके साथ खड़ा एक्सपर्ट दोनों ही हैरान रह गए। 100 का स्कोर लेने का मतलब था कि शख्स की आत्मा और बॉडी पूरे सिंक में थी और एक दूसरे से मेल खाती थी। आमतौर पर तो ऐसा सिर्फ उसके साथ ही होता था जो संत लेवल 5 में ना पहुँचे हों। ऐसे में उसका संत लेवल 7 पर होते हुए ये अंक लाना उन्हें ज़रा हैरान कर रहा था। पर कुशल आगे बोला, जो भी हो उसकी आत्मा और बॉडी परफेक्ट मैच में है, वो अपनी बॉडी को आत्मा से अलग नहीं कर सकेगा, इसलिए वो दोषी नहीं हो सकता। रिजल्ट से हैरान तो वो भी था, लेकिन दुनिया में अजीब टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं होती थी, इसलिए नॉर्मल से अलग किसी शख्स को देखना इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी इस वक्त उनका फोकस दोषी को खोजने पर होना चाहिए, एबनॉर्मल लोगों को देखने पर नहीं। और इसमें कोई शक नहीं था कि वो आत्मज्ञानी नहीं था, क्योंकि उसकी बॉडी और आत्मा का मैच आत्मज्ञानियों वाला था ही नहीं। आगे बढ़ो, कुशल ने कहा। उसने आज आए हुए चारों इंस्पेक्टरों को तो चेक कर ही लिया था, लेकिन उनमें कोई गड़बड़ नहीं थी, इसलिए वो सिर हिलाता रह गया और उसने चेक आगे जारी रखने के लिए कह दिया। और जल्द ही कमरे में खड़े सभी 200-250 इंस्पेक्टरों को चेक कर लिया गया, लेकिन एक भी 90 से नीचे मैच वाला उन्हें नहीं मिला, यानी जैसा कि रिपोर्ट में था उनमें से कोई भी आत्मज्ञानी नहीं था। ये सब देख कुशल सोच में पड़ गया, मेरा ही अंदाज़ा गलत तो नहीं हो गया। वो बड़े ही शौक में था। किंग मितेश के मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में आने के बाद भी पूरा महल कई बार चेक किया गया था। उस पर का वार डिफेंस लगाए गए थे ताकि सभी जासूस और छुपे हुए दुश्मनों को बाहर निकाला जा सके, और जिन पर भी शक था उन्हें मार दिया गया था।
तो अगर इन इंस्पेक्टरों में से कोई दोषी नहीं था तो वो आत्मज्ञानी आखिर आया कहाँ से?
रिजल्ट को अब भी वहीं देखकर एक्सपर्ट बोला, अब हम क्या कहेंगे, यहाँ तो रिजल्ट सब एक जैसा ही आ रहा है। कुशल ने थोड़ा सोचा, फिर बोले, फिलहाल के लिए इंस्पेक्शन वैसे ही चलने दो जैसा चल रहा था, लेकिन याद रहे कि किसी को भी इस महल से बाहर ना जाने दिया जाए। अरे हाँ, एक काम करो, मुझे पहले तो इंस्पेक्शन के रिजल्ट ला कर दो। जी, एक्सपर्ट ने सिर हिलाया और फिर एक गार्ड को भेजकर तुरंत कुछ बॉक्स मंगवा लिए। उन बॉक्स में इंस्पेक्टरों की लिखी हुई आंकलन की चिट थी। एक्सपर्ट वो बॉक्स उसे पकड़ाते हुए बोला, ज्यादातर इंस्पेक्टर मार्ग के काफी पास पहुंचने में सफल हो गए थे और बस कुछ के आंकलन में ही बड़ा फर्क था। जो भी एग्जाम पास कर पाए थे उन्हीं को ये टेस्ट देने यहाँ बुलाया गया था। ऐसे में उन इंस्पेक्टरों के लिए उन धातुओं और जड़ी बूटियों की कीमत का सही आंकलन मुश्किल जरूर था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि नामुमकिन बन जाए। स्टारस्टोन की एवरेज कीमत 120 शुद्ध स्प्रिट स्टोन लगाई गई थी, चिल रॉक की 250 शुद्ध स्प्रिट स्टोन, और इसी तरह से उसने सभी खजानों के आंकलन एक एक करके बता दिए। कुशल ने सिर हिलाया और जल्दी से सभी जवाबों को देखने लगा। तभी अचानक से उसकी नज़र में कुछ ऐसा आया जिससे उसके होश उड़ गए और वो बोला, ये चिरु चंदेला कौन है और उसके सभी जवाब इतने सटीक कैसे हैं? किसी भी एक धातु के दो टुकड़ों के लिए भी उनकी कीमत उनके साइज, कलर, लोकेशन आदि के हिसाब से बदलती थी। इसलिए ही खजानों की कीमत सही कीमत का अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल होता था। इसलिए जो प्राइम एक्सपर्ट उसे रिपोर्ट कर रहा था वो उन 200-250 इंस्पेक्टरों के आंकलन से निकला एवरेज था। लेकिन कमाल की बात यह थी कि चिरू के लगाए हुए सभी आंकलन एवरेज के बेहद नज़दीक थे, इतने करीब के बाकी किसी के भी नहीं थे। वैसे तो कई इंस्पेक्टर का आंकलन एवरेज के करीब ही था, लेकिन पिछले कुछ धातु और जड़ी बूटियों के मामले तो उस चिरू चंदेला का आंकलन बस एवरेज से 1-2 स्प्रिट स्टोन के अंदर में ही था, जो उसके दिमाग में खतरे की घंटियां बजा रहा था। कुशल को चिरू के आंकलन पर फोकस करते देख उसके साथ खड़ा एक्सपर्ट बोला, ये देखकर तो मैं भी हैरान रह गया था, पर शायद अपनी स्किल में काफ़ी अच्छा है इसलिए वो सब कर पाया। ये सुन कुशल बोला, मैं उसके टैलेंट पर शक नहीं कर रहा, लेकिन ये वही चिरू चंदेला है ना जिसकी बॉडी आत्मा के मैच में 100 निकला था? हाँ, एक्सपर्ट ने बोला, ये सच था कि इंस्पेक्टर कीमत बताने में ही माहिर होते थे, लेकिन हर बार सही कीमत बताना तो उनके लिए भी मुमकिन नहीं था। ऊपर से उस शख्स की बॉडी आत्मा के मैच में से 100 का अंक आना, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गड़बड़ थी। इधर एक्सपर्ट को भी गड़बड़ तो लग रही थी, लेकिन शक करने का उसके पास कोई कारण नहीं था, इसलिए वो चुप रह गया था। लेकिन कुशल चुप रहने वालों में से नहीं था। वो तुरंत बोला, मुझे इस चिरू चंदेला की सारी जानकारी चाहिए, अभी क्या अभी। चिरू चंदेला की जानकारी कुशल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उस जानकारी में 10 पन्नों की उसकी इंस्पेक्शन की हिस्ट्री भी थी। कुशल ने उसे पढ़ा और कुछ देर में ही साइड में रख दिया। उसने जो पढ़ा था उसके हिसाब से इसमें कोई शक नहीं था कि चिरू एक काबिल इंस्पेक्टर था, लेकिन उसका टैलेंट इतना भी अच्छा नहीं था कि परफेक्ट रिजल्ट लेकर आए जैसा कि कुछ देर पहले के टेस्ट में हुआ था। एक बार होता तो फिर भी उसे किस्मत माना जा सकता था, लेकिन हर बार अलग अलग खजानों के लिए किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी? ये कोई इत्तेफाक नहीं था, और इसे इत्तेफाक कहने वाला खुद ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा। एक्सपर्ट ने भी उन कागज़ों को पढ़ा और उसके माथे पर भी शिकन आ गई। वो कुशल से बोला, उसे पूछताछ के लिए लेकर आऊं क्या? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद वहां जाऊंगा, कुशल ने कहा। कुशल के पास आत्मज्ञानियों का पूरा ज्ञान था, पूरी विरासत, और बेशक वो आत्मज्ञानियों का नंबर एक एक्सपर्ट था, लेकिन उस दिन उसका कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा था, क्योंकि कहने को तो वो दोषी सिर्फ ग्रेट संत लेवल 4 का ही आत्मज्ञानी था, लेकिन फिर भी वो उसकी नाक के ठीक नीचे छिपा रहा और वो उसे कुछ ना कर पाया। ऊपर से जब उसका उससे आमना सामना हुआ था तब भी सामने वाला उसे हराकर भागने में सफल हो गया था। उसने वो काम कर दिखलाया था जो खुद भी उस वक्त नहीं कर सकता था जब वो ग्रेट संत लेवल में था। इसलिए एक बात तो पक्की थी कि सामने वाला उससे भी बेहतर आत्मज्ञानी था, और बस इसी एहसास ने कुशल को हिलाकर रख दिया था। बड़ी ही सावधानी से वो उस हॉल में गया जहाँ पर टेस्ट हो रहा था। वहाँ पर इंस्पेक्टर एक एक खजाने के आगे खड़े होकर उनकी कीमत का अंदाज़ा लगा रहे थे। कुशल ने जल्दी ही चिरू को ढूंढा। उसे देखकर लगता तो नहीं था कि उसमें कुछ खास था, बड़ा ही नॉर्मल सा दिखाई देता था वो। इस वक्त चिरू एक हाथ में एक जड़ी बूटी लिए खड़ा था, जबकि दूसरे हाथ से किसी रिसर्च मटेरियल के पन्ने पलट रहा था। उसकी मूवमेंट्स और हाव भाव को देखकर लगता तो नहीं था कि वो इंस्पेक्टर के अलावा और भी कुछ होगा। उसे कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद कुशल ने अपने चेहरे पर से गुस्से वाला एक्सप्रेशन हटाया और एक बड़ी सी स्माइल के साथ चिरू के पास पहुंच गया और बोला, इंस्पेक्टर चिरू चंदेला, प्लीज़ एक मिनट रुको, मुझे तुम्हारी ज़रा मदद चाहिए थी। मेरे पास एक ख़ास खजाना है जिसकी कीमत मैं लगा नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम उसकी कीमत लगाने में मेरी मदद कर दोगे? सच तो ये था कि विपिन को कुशल के आने का पता तभी चल गया था जब उसने इस हॉल में कदम रखा था और उसे अच्छे से पता था कि वो काफ़ी देर से उसे ही देख रहा था। इसलिए जब वो उसके पास आने लगा तो सच में उसे घबराहट तो होने लगी थी। उसका भेज तो परफेक्ट होना चाहिए था, तो फिर सामने वाला उसी पर इतना फोकस कर क्यों रहा था? कहीं अनजाने में उसने ही अपनी पोल तो नहीं खोल दी थी? पर मन में चल रहे लाखों सवाल उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिए और ज़रा सा घबरा कर, ठीक वैसे ही जैसे कोई मामूली इंसान किसी सेलिब्रिटी के आगे घबरा जाता था, वैसे ही घबराते हुए वो सिर हिलाने लगा और हिम्मत करके बोला, हाँ आपकी मदद करना तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। उसके हाथ सुनते कुशल ने कलाई घुमाई और एक स्केल जैसा कुछ निकाल लिया। फर्क ये था कि स्केल प्लास्टिक या स्टील का नहीं, सोने का लग रहा था। एक नज़र में ही विपिन को पता चल गया कि वो कोई बहुत ही पावरफुल खजाना था, लेकिन जब तक वो स्केल एक्टिवेट नहीं होता तब तक वो उस खजाने का सही लेवल नहीं बता सकता था। विपिन ने स्केल को अपने हाथ में लिया और अगले ही पल स्वर्ग की लाइब्रेरी में एक किताब आ गई। लिखा था, आत्मा क्रश स्केल, पुराने संत लेवल का खजाना। ये किसी की भी आत्मा को लॉक कर लेता था ताकि वो भाग न सके। ये पुराने संत लेवल का खजाना है, लेकिन ये इतना हल्का क्यों है? विपिन हैरान रह गया। पुराने संतों की तरह पुराने संत लेवल के खजाने में भी दुनिया के एक नियम की समझ होती थी, और क्योंकि वो चीज़ें ट्रेनिंग से गई होती थी इसलिए बहुत ही ज़्यादा भारी भी होती थी। फिर चाहे साइज में वो छोटी सी ही क्यों न दिखे, वो इतनी भारी होती थी कि अपने मौजूदा लेवल पर भी विपिन को उस लेवल की चीज़ें उठाने में तकलीफ होगी।